देख लीजिए।
लास्ट पॉइंट था, क्योंकि भगवान कृष्ण भगवद गीता के वक्ता है, इसलिए उनके मार्गदर्शन में उनके मार्गदर्शन अनुसार हमें उसको स्वीकार करना चाहिए। प्रभुपाद वो उदाहरण दे रहे हैं ना, जैसे एक औषधि को लेना है तो एक वैद्य के उपदेश अनुसार, सुझाव अनुसार हमें लेना चाहिए, ना कि हमारे मनगणित ढंग से या कोई हमारे मित्र के सुझाव से हमें लेना चाहिए। तो भगवान कृष्ण अर्जुन के सामने तो उपलब्ध थे, प्रकट थे, उनके सामने थे वो, उनके पास थे। अभी तो हमारे पास नहीं है भगवान, कैसे हम लोग समझेंगे उसको? सीधी तरीके से डायरेक्टली प्रभुपाद शब्द वहाँ पर यूज करते हैं, सीधी तरीके से कैसे हम लोग भगवान कृष्ण के द्वारा मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं? तो उसके लिए दो उत्तर है, क्योंकि भगवद गीता भगवान कृष्ण से अभिन्न है। तो जैसे उन्होंने बताया है उसको हम लोग ठीक तरह से स्वीकार करेंगे तो वो भगवान कृष्ण के जैसे ही है, सीधे उनके मार्गदर्शन के समान ही है वो। या दूसरा है उनके प्रतिनिधि, जैसे हम लोग चर्चा कर रहे थे उनके गुरु जो होते हैं उनके प्रतिनिधि। एक पॉइंट था गुरु या शुद्ध भक्त के या भक्त के मार्गदर्शन में जो परंपरा में आते हैं उनके मार्ग, वो थोड़ा मतलब जनरल हुआ सामान्यतः। तो विशेष करके जो गुरु के मार्गदर्शन में हम लोग इसको समझेंगे तो वो सीधा भगवान कृष्ण के मार्गदर्शन के समान ही है, तो वो हमें जानना चाहिए। तो अभी हमारे पास जो भगवद्गीता उपलब्ध है वो क्या, किसके बीच में वार्तालाप है? वो संजय और धृतराष्ट्र के बीच में वार्तालाप। सो संजय कैसे उनको भगवद्गीता का ज्ञान प्रकाशित हुआ? हृदय में हुआ,
गुरु की कृपा से
देख के गए थे। महाभारत में ऐसे वर्णन आता है, वो देख के गए थे करते, लेकिन स्वयं भगवद गीता में वो कहते हैं कि व्यास देव की कृपा से मैं ये सब कुछ मुझे प्रकाशित हुआ ऐसे। कहाँ पर बोलते हैं वो? 18 चैप्टर 18 अध्याय श्लोक क्रमांक, श्लोक क्रमांक 75 हाँ 18 अध्याय के 75वां श्लोक का। व्यास प्रसादात् श्रुतवान् एतद्गुह्यम् अहम् परम् योगम् योगेश्वरात् कृष्णा साक्षात् कथयतः स्वयं। व्यास की कृपा से मैंने ये परम गुह्य बातें साक्षात योगेश्वर कृष्ण के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी। तो भगवान व्यास संजय व्यास के शिष्य थे, उनके कृपा से मैंने साक्षात योगेश्वर के मुख से अर्जुन के प्रति कही जाती हुई सुनी ऐसे बोलते हैं। मतलब जो युद्ध भूमि में हो रहा था वो संजय सुन सके वो भगवान व्यास के। तो यहाँ पर तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, व्यास संजय के गुरु थे और संजय स्वीकार करते हैं कि व्यास की कृपा से ही भगवान को समझ सके। इसका अर्थ यह हुआ कि गुरु के माध्यम से ही कृष्ण को समझना चाहिए, प्रत्यक्ष रूप से नहीं। गुरु व्हाट इज दैट, प्रत्यक्ष रूप से गुरु स्वच्छ माध्यम है, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। सो यहाँ से हमें ये चाहिए, गुरु स्वच्छ माध्यम है, ट्रांसपेरेंट मीडियम, यद्यपि अनुभव फिर भी प्रत्यक्ष ही होता है। हालांकि गुरु कृष्ण और हमारे बीच में है, क्योंकि वो स्वच्छ माध्यम है, ये जो अनुभव क्या होता है, कृष्ण का अनुभव सीधा है, प्रत्यक्ष है। गुरु परंपरा का यही रहस्य है, जब गुरु प्रमाणिक हो तो भगवद्गीता का प्रत्यक्ष श्रवण किया जा सकता है, जैसे अर्जुन ने किया। भगवद्गीता लीला तो हम हर समय होता रहता है, ये नित्य लीला है, भगवान के सभी लीला नित्य है। एको देवो नित्य लीलानुरक्तो, उपनिषदों में बताया गया है कि वही एक ही भगवान क्या करते हैं, नित्य लीला में लगे रहते हैं। तो इसका अर्थ है कि जन्माष्टमी अभी खत्म हुआ, लेकिन जन्माष्टमी कहीं ना कहीं तो चलते रहता है, एक ही भगवान है लेकिन नित्य लीला में लगे रहते हैं। किसी न किसी के ब्रह्मांड में भगवान का जन्माष्टमी लीला अभी भी चल रहा है, तो वैसे ही भगवद्गीता लीला भी चलता रहता है। तो गुरु की कृपा से हम लोग सीधा भगवद्गीता सुन सकते हैं, तो ये एक अर्थ है, सीधा कैसे भगवान के द्वारा हम सुन सकते हैं उसे, तो वो एक है। या दूसरा, ये जो शब्द है भगवान से अभिन्न है, इसलिए वो सीधा अनुभव होता है। संसार भर में अनेक योगी है, लेकिन कृष्ण योगेश्वर। ओके, नारद कृष्ण के शिष्य है और व्यास के गुरु, अतएव व्यास अर्जुन के ही समान प्रमाणिक है, क्योंकि वे गुरु परंपरा में आते हैं। और संजय व्यास देव के शिष्य है, अतएव व्यास की कृपा से संजय की इंद्रिया विमल हो सकी और वे कृष्ण का साक्षात दर्शन कर सके तथा उनकी वार्ता सुन सके। जो व्यक्ति कृष्ण का प्रत्यक्ष श्रवण करता है वह इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। जो साक्षात दर्शन करते हैं वही इस गुह्य ज्ञान को समझ सकता है। यदि वह गुरु परंपरा में नहीं होता तो वह कृष्ण की वार्ता नहीं सुन सकता, अतएव इसका ज्ञान सदैव अधूरा रहता है, विशेषतः जहाँ तक भगवद्गीता समझने का प्रश्न है। सो परंपरा में नहीं है तो कभी भी भगवान कृष्ण को हम सुनेंगे नहीं, वो क्या बोल रहे हैं उसको सुन नहीं सकते। हालांकि आप भगवद्गीता पढ़ेंगे फिर भी, इसका अर्थ सीधा समझने का अर्थ। भगवद्गीता में योग की समस्त पद्धतियों का, कर्म योग, ज्ञान योग तथा भक्ति वर्णन हुआ है। लेकिन यह समझ लेना चाहिए कि जिस तरह अर्जुन कृष्ण को प्रत्यक्षतः समझ सकने के लिए भाग्यशाली था, उसी प्रकार व्यासदेव की कृपा से संजय भी कृष्ण को साक्षात सुनने में समर्थ हो सका। वस्तुतः कृष्ण से प्रत्यक्षतः सुनने एवं व्यास जैसे गुरु के माध्यम से प्रत्यक्ष सुनने में कोई अंतर नहीं है। समझ में आया? तो गुरु भी व्यासदेव के प्रतिनिधि होता है, अतः वैदिक पद्धति के अनुसार अपने गुरु की जन्म दिवस पर शिष्यगण व्यास पूजा नामक उत्सव रचाते हैं। खंडक द सेरेमनी, खंडक मीन्स रचाना, एनी अदर हिंदी वर्ड फॉर खंडक, आयोजित करते हैं। कंडक्ट इज आयोजन, ऑर्गेनाइजिंग इज आयोजन, कंडक्टिंग इज रचाते हैं। दिस इज गुड वर्ड, दीज आर ऑल गुड वर्ड्स। So what do you feel about the translation? Many, it can be improved, right? So, yeah, I also feel it. Right, you must be my good friend. Yeah. Paradarshak Madhyam, transparent medium. So, अठारवे अध्याय का 57 वहाँ पर व्हाट इज दैट नाउ वन मे आर्ग्यू दैट अर्जुन वाज एक्टिंग अंडर द पर्सनल डायरेक्शन ऑफ कृष्णा।
अब कोई यह तर्क दे सकता है कि अर्जुन कृष्ण के व्यक्तिगत निर्देशानुसार कार्य कर रहा था, लेकिन जब कृष्ण उपस्थित ना हो तो कोई किस तरह कार्य करे?
इस श्लोक में देखेंगे सारे कार्यों के लिए मुझ पर निर्भर रहो और मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, ऐसे भक्ति में मेरे प्रति पूर्णतया सचेत रहो। सो अर्जुन को बोल रहे थे मेरे ऊपर निर्भर रहो, मेरे संरक्षण में सदा कर्म करो, मेरे संरक्षण में। वहाँ पर भगवान उपस्थित थे, उनके संरक्षण में अर्जुन युद्ध कर रहे थे, लेकिन हमारे लिए वो नहीं है ना, तो ऐसे प्रश्न उठ सकता है। हाँ, आगे पढ़िए। यदि कोई
इस पुस्तक में दिए गए कृष्ण के निर्देश के अनुसार तथा कृष्ण की प्रबुद्धि के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो उसका फल वैसा ही होगा।
तो भगवद्गीता का जो अक्षर है वो अभिन्न है भगवान से और उनके प्रतिनिधि के। अभी हम लोग भगवद्गीता के इतिहास के बारे में, इतिहास क्या है, किस समय से वो मनुष्य समाज में विद्यमान है, कोई लिखेंगे आगे का जो वॉट इज दैट हाउ टू नो भगवद्गीता। भगवान कृष्ण के द्वारा सीधा कैसे श्रवण भगवद्गीता श्रवण कर सकते हैं या प्रत्यक्ष? भगवान कृष्ण के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भगवद्गीता कैसे श्रवण कर सकते हैं? प्रत्यक्ष रूप से भगवद्गीता कैसे श्रवण कर सकते हैं वो चर्चा हो गया अभी। कृष्ण द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भगवद्गीता कैसे श्रवण कर सकते
हैं अभी चर्चा हुआ है ये।
नवा भगवत गीता का इतिहास, भगवत गीता का इतिहास दसवां, भगवत गीता का पांच विषय, भगवद्गीता के और विषय
अपार्ट फ्रॉम फाइव, व्हाट एल्स इज देयर, बट दैट आल्सो कम्स इन दिस फाइव ओनली.
बारहवां भगवद्गीता का उद्देश्य,
very fast. तो कोशिश करेंगे ये सब खत्म करने के लिए. सो इतिहास कहां पर वर्णन हुआ है भगवद्गीता का इतिहास? चार एक महाभारत में. तो अभी जो हमारे पास भगवद्गीता का उपलब्ध है वो 5000 साल पूर्व बताया गया था अर्जुन को, और वो फिर से संजय और धृतराष्ट्र के बीच में दोहराया गया. फिर व्यासदेव ने वैशंपायन मुनि महाराज जन्मेजय को वो बताया महाभारत सुनाते वक्त, और व्यासदेव ने अपने ग्रंथ महाभारत में इसको लिख डाला गणेश के द्वारा, है ना. तो वो हमारे पास 5000 साल से है. लेकिन इस भगवद गीता में और भी पूर्व इतिहास, गीता का पूर्व इतिहास के बारे में वर्णन है. तो भगवान कृष्ण कहते हैं 4th अध्याय के आरंभ में, हम लोग वो श्लोक उल्लेख कर रहे थे ना, इमं विवस्वते योगम प्रोक्तवानहमव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनुरिक्ष्वा कवे ब्रवीत. तो मैंने इस ज्ञान को विवस्वान को दिया, विवस्वान ने मनु को दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को दिया. महाभारत में इसके बारे में वर्णन आता है कि कब मनु ने या विवस्वान ने मनु को ये ज्ञान प्रदान किया. तो शांति पर्व 348वें अध्याय 51 और 52 श्लोक भगवद्गीता का इतिहास है. त्रेतायुगादो च ततो विवस्वान् मनवे ददो मनुष्य लोक भ्रत्यर्थम सूत इक्ष्वाकवे ददो इक्ष्वाकुना च कथितो व्याप्य लोकानवस्थितः. त्रेता युगा युगादौ च ततो विवस्वान् मनवे ददो. त्रेता युग के आरंभ में कब भगवान कृष्ण ने इसको सूर्यदेव को दिया उसके बारे में वर्णन नहीं है. सो लेकिन अलग अलग जगह पर वर्णन आता है, रामानुजाचार्य भी वर्णन किए हैं और भागवत में भी वर्णन आता है. सो सूर्य लोक में भगवान का एक रूप प्रकट होता है, उनको सूर्य नारायण कहते हैं. वो सूर्य नारायण ने सूर्यदेव को ये गीता का ज्ञान दिया. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं ना, अर्जुन भी वहाँ पर उपस्थित थे इन डिफरेंट कैपेसिटी में ऐसे. तो ऐसे हम लोग देखते हैं वहाँ पर अर्जुन भी उपस्थित थे. लेकिन त्रेता युग के आरंभ में ये विवस्वान
बिंबसार ने मनु को दिया। सो अभी थोड़ा मैथमेटिक्स करेंगे हम लोग। मैथमेटिक्स थी सीखना चाहते हैं, भगवद गीता से हम लोग गणित भी सीख सकते हैं। हम ऐसे करने वाले हैं गुरुकुल में, भगवद गीता के द्वारा गणित सिखाने का इच्छा है हम है ना। तो वी डोंट हैव बोर्ड ना। एनीवे कलयुग का अवधि पता है सबको कितना है करके? 4 लाख। कहाँ पर दिया गया ये सब? ये सब अलग अलग युग का जो समय है कहाँ पर दिया गया है? भागवत में दिया गया। और कहाँ पर दिया गया है? पुराण में दिया गया। और कहाँ दिया गया? रमित कुमारी लोग आगे आके आपको बोलेंगे कलयुग मतलब 25,000 साल, द्वापर युग मतलब अनदर 25,000 साल, कुल मिला के 1,00,000 साल 4 युग हो गया। फिर कैसे खंडन करेंगे उनको आप? फिर आपको वो प्रश्न पूछेंगे तो आप क्या बोलेंगे? कहाँ ये दिया गया करके? सभी पुराणों में भी दिया गया है, श्रीमद् भागवत में भी दिया गया है और ज्योतिष शास्त्र में दिया गया है। सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि नामक ज्योतिष शास्त्र है ना, ये सब गणित वहाँ पर है। अलग अलग लोगों के बीच में कितना अंतर है, योजना मतलब क्या है, ये सब सब गणित वहाँ पर है। ज्योतिष शास्त्र, सूर्य सिद्धांत और सिद्धांत शिरोमणि, ये दोनों ज्योतिष शास्त्र है। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने ये सभी ये दोनों को बंगला भाषा में अनुवाद करके उसके ऊपर टीका लिखा था, इसलिए उनको सिद्धांत सरस्वती नाम दिया गया है ना, पता है ना आपको? वो जब सिर्फ 18-17 साल के थे सब ये शुरू किया, 21 साल तक खत्म कर दिया पूरा अनुवाद और उसके ऊपर टीका। चार साल में आपका आयु कितना है अभी? क्या अकम्पलिशमेंट दिया? वो पढ़ के सुनने के समझने के लिए भी मुश्किल है हम लोग। हमारा स्थिति है ठीक है। हाँ नहीं वो बहुत लंबा है। तो ये सब वहाँ पर वर्णन है। कलयुग का कितना अवधि है? 4,32,000। 25,000 नहीं, 4,32,000। और द्वापर युग का कितना हो गया? 8,64,000। कैसे हो गया वो 8,64,000? द्वापर युग कलयुग का 2 गुना ज्यादा रहता है। और त्रेता युग कितना हो गया? 12,96,000। तो ये 3 गुना कलयुग का, 3 गुना त्रेता युग होता है। यहाँ पर महाभारत में क्या बताया? त्रेता युगादो, युगादो त्रेता युग के आरंभ में ऐसे बताया गया। तो फिर ये तीनों को हमें अभी क्या करना चाहिए? जोड़ना चाहिए है ना। सो कितना होगा जोड़ेंगे तो आप आपके ग्रंथ में, आपके ग्रंथ में थोड़ा उसको कीजिए, आपके बुक में उसको जोड़िए उसको। पता है ना मैथमेटिक्स जोड़ना कैसे? ये तीनों जोड़िए जल्दी जल्दी।
12,96,000, 8,64,000 और 4,32,000. डोंट बी लेजी, फास्ट. हाउ मच?
32,92,000.
श्योर, वंस मोर यू डू. It will not come that much. 22 something it comes in. Ah, yeah. It will come. It will come. It will come 25. 25 lakh. सब लोगों ने किया. सबको पता है ना करने के लिए? नहीं पता तो है तो ठीक है, याद रख देने का. हाँ, आप जोड़े हैं ना, कितना हो गया? खलियुग 4,32,000. ओके. That's what I was thinking. How it is? अभी खलियुग तो पूरा नहीं हुआ है ना, 32 लाख, 4 लाख, तो सिर्फ 5,000 साल हो सके. खलियुग का 5,000 साल कब खत्म हुआ पता है? 1897. 5,000 साल खत्म हो गए थे. अभी 5,119 साल ना, कलियुग का 5,119 साल हो गया अभी. कलियुग का एग्जैक्ट फिगर एक चाहिए. या 21,65,000. इट इज 97 इज द मार्क ऑफ 5,000 ईयर्स ऑफ कलियुग. पाँच हजार 117 के कलयुग के हुए अभी. पाँच हजार 117 जोड़ना चाहिए कलयुग और द्वापर युग और त्रेता युग. इक्कीस लाख 65,117 साल से भगवद गीता मनुष्य समाज में है. इतिहास में, आधुनिक इतिहास में एक थ्योरी है. वी शुड फाइंड सम अदर वर्ड फॉर मत है. ऐसा मत है, सिद्धांत मीन्स दैट इज अ कंक्लूजन. ऐसा मत है कि 3,500 साल पहले यूरोप से डार्विन के सिद्धांत के या मत के अनुसार 21,000 क्या है, 21,65,117 साल पहले मनुष्य नहीं थे. राइट अराउंड 40,000 ईयर्स बैक ह्यूमन बींग्स हैव कम लाइक दैट. 40,000 साल पहले, 40,000 साल पहले मनुष्य आए हैं डार्विन के अनुसार. और आधुनिक इतिहास में भी एक और मत है कि 3,500 साल पहले यूरोप से सभ्य लोग यहाँ पर आए भारत में, उन्होंने वेद का रचना किया. ऐसे बोलते हैं, इसको आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहते हैं. तो फिर से ये लोग पतित हो गया है, इसलिए हम लोग फिर से आए हैं आपको उद्धार करने के लिए. ऐसे ब्रिटिश लोग ऐसे बताया था.
तो ये सब मूर्ख है। क्यों मूर्ख है? क्योंकि भगवद गीता में बताया जा रहा है कि 21,65,117 साल से मनुष्य समाज में भगवद गीता है। तुम क्या बोल रहे हो 305,000 साल पहले? ये सब बकवास की बात है सब। और ये सब डार्विन वगैरह सब बकवास की बात है, हमें उनको स्वीकार नहीं करना चाहिए। फिर इसके लिए क्या प्रमाण है, इस इतिहास के लिए क्या प्रमाण है, क्या प्रमाण है इस इतिहास के लिए? इस इतिहास के लिए प्रमाण है हमारा परंपरा। तुम हम अपना इतिहास लिखते हो, कोई आके चाइना से आके कुछ लिख के डाल दिया और उसके ऊपर तुम अपना इतिहास लिखते हो, क्यों ये परंपरा आचार्य जो बोलते हैं उसको स्वीकार नहीं कर सकते हो? व्हाट इज योर प्रॉब्लम, क्या समस्या है आपका, है ना? तो ये सब हमें प्रस्तुत करना चाहिए इतिहास में न? तो हमें गुरुकुल में ये इतिहास सिखाना है, सही सही इतिहास, है ना? तो ये भगवद गीता के तो पढ़िए उसको, चौथे अध्याय का पहले श्लोक के तात्पर्य के आरंभ से पढ़िए। आरंभ का एक एक वाक्य चाहिए और फिर इन महाभारत से फिर से।
यहाँ पर हमें भगवद गीता का इतिहास प्राप्त होता है।
और फ्रॉम अ रिमोट टाइम व्हेन इट इज डिलीवर्ड टू द रॉयल ऑर्डर ऑफ ऑल प्लैनेट्स
बीइंग, यह अत्यंत प्राचीन बताया गया है, जब इसे सूर्य लोक इत्यादि संपूर्ण लोकों की राजा को प्रदान किया गया था।
देन इन महाभारत
नेक्स्ट श्लोक है, महाभारत में शांति पर्व 348 51-52 में हमें गीता का इतिहास इस रूप में प्राप्त होता है।
देख रहे हैं कहां पर हम लोग पढ़ रहे हैं?
त्रेता युगादि चातुर्थो विवस्वान बनवे ततो मनुष्य लोक प्रत्यर्थम सुताय इक्ष्वाकु ततो चुवा पुराचा कथितो प्राप्त लोक में अवस्थिता। त्रेता युग के आदि में विवस्वान ने परमेश्वर संबंधी इस विज्ञान का उपदेश मनु को दिया और मनुष्यों के जनक मनु ने इसे अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया। इक्ष्वाकु इस पृथ्वी के शासक थे और उस रघुकुल के पूर्वज थे जिसमें भगवान श्री राम ने अवतार लिया। इससे प्रमाणित होता है कि मानव समाज में महाराज इक्ष्वाकु के काल से ही भगवद गीता विद्यमान थी।
व्याप्य लोकान अवस्थितः, उसका अर्थ क्या है? सो इस लोक में वो विद्यमान है उस समय से। फिर आगे पढ़िए।
इस समय कलयुग के केवल 5,000 वर्ष व्यतीत हुए हैं, जबकि इसकी पूर्ण आयु 4,32,000 वर्ष है। इसके पूर्व द्वापर युग
8 लाख
वर्ष था।
प्रोपा जी अप्रोक्सीमेट दे रहे हैं, एग्जैक्ट फिगर नहीं दे रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली ऐसे बता रहे हैं।
इसके भी पूर्व त्रेता युग 12 लाख वर्ष था। इस प्रकार लगभग 20,05,000 वर्ष पूर्व मनु ने अपने शिष्य तथा पुत्र इक्ष्वाकु से जो इस पृथ्वी के राजा थे श्रीमद् भगवद गीता कही। वर्तमान मनु की आयु लगभग 30,53,00,000 वर्ष अनुमानित की जाती है, जिसमें से 12,04,00,000 वर्ष बीत चुके हैं। यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव विवस्वान को गीता सुनाई।
सो मनु का अवधि कैसे है, उसको गणना करना चाहिए, कैसे गणना कर सकते हैं उसको? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो 14 मनु मतलब एक दिन ब्रह्मा जी का मतलब 1,000 चतुर्युग, तो अप्रॉक्सीमेटली 71 चतुर्युग एक मनु का अवधि है। 71 चतुर्युग को एक मनु अवधि तो कैलकुलेट करेंगे तो इतना समय आ जाएगा। ठीक है, और पढ़िए।
यह मानते हुए कि मनु के जन्म के पूर्व भगवान ने अपने शिष्य सूर्यदेव वसवान को गीता सुनाई, मोटा अनुमान यह है कि गीता कम से कम 12,04,00,000 वर्ष पहले कही गई और मानव समाज में यह 20,00,000 वर्षों से विद्यमान रही।
या प्रभुपाद यहाँ पर कब ये विवस्वान को दिया गया तो वो भी बता रहे थे ऊपर, मैंने बताया था ना ये, वो पता नहीं करके, लेकिन यहाँ पर पता है। देखिए सो और मनुष्य जमाने में मनुष्य तो 20,00,000 साल तक तो है। आप इतिहास में आप पढ़ेंगे तो आधुनिक इतिहास में लोगों को 3,500 साल पहले का इतिहास, उसके पहले पूर्व का इतिहास कुछ पता ही नहीं, उनको कुछ पता ही नहीं। आप स्कूल के टेक्स्ट बुक में देखेंगे तो यहाँ पर हम लोग 20,00,000 वर्ष का इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो और वो लोग बोलते हैं वहाँ पर मनुष्य ही नहीं थे, ये सब कितना कितने कितना सारा यू नो सो मच व्हाट दे से चीटिंग, कितना धोखा दे रहे हैं ना बच्चों को ऐसे कुछ सिखा के, है ना। तो ये सब धोखा है ना, स्कूल और कॉलेज में यूनिवर्सिटी में सो ठगना। तो उनको सब ठीक ठीक ये सब सिखाना चाहिए। तो परंपरा का हमारे पास प्रमाण है ना, उसको कोई नहीं कर नहीं सकते। तो ऐसे लोगों को अंधकार में रखा जाता है, जो सत्य है उसको नहीं बताया जाता। सो प्रभुपाद जी कहा करते थे, सो एवरीवन इज केप्ट इनटू इग्नोरेंस इन द नेम ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन। सब लोगों को ये विश्वविद्यालय का जो शिक्षा के नाम से सभी लोगों को अंधकार में रखा जाता है, तो यही शिक्षा है। तो हमें ये सब बताना चाहिए। ठीक है, इससे भी बहुत सारे चीज हो जानकारी मिलता है। कुछ क्रिश्चियन लोग भी ऐसे कहते हैं, लोग भारतीय संस्कृति क्या है, बहु ईश्वरवादी संस्कृति है। ये वैष्णव संप्रदायों में रामानुजम अद्वा ऐसे वैष्णव संप्रदाय में गौड़ीय संप्रदाय में ये एक ईश्वरवाद भगवान विष्णु या कृष्ण का आराधना होता है, वो क्रिश्चियन धर्म से आया 2000 साल पूर्व, यू नो ईसा मसीह आया ना, उनके बाद कृष्ण जो ईसा ईसाई धर्म के जो प्रचारक है यहाँ पर भारत में आए, उन्होंने ये एक ईश्वरवाद को प्रचार किया। उसके बाद ये वैष्णव संप्रदाय ये सब उनसे लिए, ऐसे वो बोलते हैं, वो लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन ना ये ऐसे बोलते हैं, जब प्रभुपाद जी भी पाश्चात्य देश में प्रचार कर रहे थे उनको भी ऐसे बोला गया, वो आत्म साक्षात्कार के विज्ञान वो ग्रंथ में है ना, वो जॉन वो स्टॉल प्रोफेसर स्टॉल के साथ प्रभुपाद जी का वार्तालाप होता है ना, खत के द्वारा खत व्यवहार, उसमें वो बोलते हैं उसने क्या करा, ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन हिंदू धर्म हिंदू और ईसाई धर्म का मिश्रण है ये, तो ईसा में ईश्वरवाद को पूजा किया जाता है, एक ही गॉड गॉड बोलते हैं ना वो, और वो लेकर वो पॉइंट लेकर और हिंदू धर्म का कृष्ण को मिलाकर ये हरे कृष्ण आंदोलन बन गया है, लाइक ऐसे वो बोलते हैं। सो फिर प्रभुपाद जी उनको अच्छी तरह समझाना पड़ा उनको। तो ऐसे गए ईसाई धर्म के लोग प्रचार करते हैं। अभी आप देखेंगे भगवद्गीता में भगवान ये बहु ईश्वरवाद को खंडन करते हैं, है ना, भगवद्गीता अलग अलग जगह पर भगवद्गीता में देवी देवताओं का उपासना का खंडन करते हैं, और भगवान ये क्या करते हैं, वो बताते हैं कि मैं ही सर्वोच्च हूँ, मत्तः परतरम नान्यत् किंचित् अस्ति धनंजय, मैं ही सर्वोच्च हूँ, मेरे ऊपर और कोई नहीं है, मेरा समान कोई नहीं है, इसका अर्थ है कि भगवद गीता में भी एक ईश्वरवाद का वर्णन आता है, और एक ईश्वरवाद का वर्णन भगवद गीता में आता है। तो भगवद गीता कितने समय से है? 20 लाख, कम से कम 20 लाख साल से मनुष्य। आप 2000 साल के बारे में बात कर रहे हैं, हम लोग 20 लाख साल 20 लाख साल के बारे में बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? ऐसे ऐसे उनको बताना चाहिए। ऐसे कई सारे गलत धारणाएं आते हैं इसके साथ, इसलिए ये सब जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों हमें ये सब गणित करना, हमारे सर दर्द करने के लिए यहाँ पर प्रॉपर वर्णन नहीं कर रहे हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल दिस थिंग्स। ठीक है, आप प्रचार में जाएंगे तो ये सब चीज आते रहेंगे, लोग बोलते रहेंगे कुछ ना कुछ बोलते रहेंगे, है ना। अभी अगला है भगवद गीता के 5 विषय। कौन कौन है 5 विषय भगवद गीता के? कौन बोलेंगे? बोले, हाथ ऊपर बोले। ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। क्या क्या है ये, इसका अर्थ क्या है? ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल, कर्म का। कर्म अशाश्वत है। ये पहले 4 जो है वो शाश्वत है, और कर्म क्या है वो शाश्वत नहीं है। सबको पता है ना 5 विषय भगवद गीता के? ये 5 एक दूसरों से संबंधित है, तो प्रभुपाद विस्तार से वर्णन करते हैं इन 5 का संबंध क्या है। भगवान सुप्रीम कंट्रोलर, वो सर्व नियामक है, सबको नियंत्रण करते हैं। किसको नियंत्रण करते हैं? वो प्रकृति को नियंत्रण करते हैं और जीव को भी नियंत्रण करते हैं। कहां पर बताया गया है भगवद गीता में कि कैसे भगवान प्रकृति को नियंत्रण करते हैं? मयाध्यक्षेन प्रकृति सूयते स्वचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगत भी परिवर्तते। मेरे मार्गदर्शन में वो चलता है। उपनिषदों में भी वैसे वर्णन के, विषास्माद् वातः भवते विषोदेति सूर्यः, विषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च चंद्रश मृत्युर्धावति पंचमः। तो पता है किसी को इसका अर्थ क्या है, अनुवाद क्या है इस श्लोक का? विषास्माद् वातः भवते विषोदेति सूर्यः, विषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च मृत्युर्धावति पंचमः। भगवान कृष्ण के भय से वायु बहती है, वातः पवते विषास्माद् अग्निश्चन्द्रश्च विषोदेति सूर्यः। सूर्य सुबह उगते हैं, शाम को अस्त होते हैं, किसके भय से? भगवान कृष्ण के भय से। और भगवान कृष्ण के भय से ही अग्नि और चंद्र भी प्रकाश प्रदान करते हैं, और भगवान कृष्ण के भय से ही मृत्यु क्या है, सबको पीछा करती है। मृत्युर्धावती पंचमा, सब लोग उनके भय से, वो नियंत्रण करते हैं। ऐसे प्रकृति के ऊपर भगवान का नियंत्रण। आजकल आधुनिक वैज्ञानिक लोग वो कहते हैं कि प्रकृति क्या है, वो स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट और परिपूर्ण है। आधुनिक विज्ञान के सभी जो धारणाएं हैं, उनके जो मत है, वो इस सिद्धांत के आधार पर है कि प्रकृति क्या है, परिपूर्ण है, और प्रकृति स्वतंत्र है, उसके परे कोई नहीं है, नियंत्रण करने वाला नहीं है। और प्रकृति के नियमों के आधार पर हम सब कुछ वर्णन कर सकते हैं, सब कुछ विश्लेषण कर सकते हैं। यही सिद्धांत के आधार पर सभी आधुनिक विज्ञान आधारित है, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर पा रहे। सब लोग उनका अलग 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 मत है, तो इसलिए पूरा अंधकार में है वो लोग, और वो सिर्फ आश्वासन देते हैं, आगे जाके हम लोग ये सब बताएंगे आपको। ऐसे जैसे इस ब्रह्मांड के बारे में कॉस्मोलॉजी बोलते हैं ना उसको अंग्रेजी में,
तो ब्रह्मांड के बारे में कई सारे ऐसे मत है या धारणाएं हैं। तो एक बिंदु था, उससे विस्फोट हो गया, वो बिंदु कहाँ से आया, तो उसके बारे में कुछ जानकारी नहीं है। तो ऐसे कई सारे उनका धारणाएं हैं। एक प्रसिद्ध, बहुत ही प्रसिद्ध मूर्ख विज्ञानी है स्टीफन हॉकिंग करके, तो वो कह रहे थे कि अभी हम लोग कॉस्मोलॉजी के बारे में, ब्रह्मांड के बारे में, कैसे उसका सृष्टि हुआ, कैसे वो प्रकट हुआ, उसके बारे में हम लोगों के पास एक ही ऐसा कोई सिद्धांत नहीं है जो सब कुछ वर्णन करता है ठीक तरह से। बिट्स एंड पीसेस हमारे पास ऐसे कुछ थोड़ा 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 अलग 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 मत और धारणाएँ हैं। तो अभी हम लोग आगे जाके ऐसे बनाने वाले हैं, ऐसा एक सिद्धांत बनाने वाले हैं जो सब कुछ वर्णन करेगा, उसको वो लोग थ्योरी ऑफ एवरीथिंग बोलते हैं। ऐसा वो थ्योरी को, एक सिद्धांत को क्या करने वाला है, सृष्टि करने वाला है, ऐसे बोलते हैं। लेकिन 1928 में एक और वैज्ञानिक था मैक्स बॉर्न करके, वो कहते थे 6 महीने में अभी पूरा विज्ञान खत्म हो जाएगा, अंत हो, विज्ञान पूर्ण हो जाएगा ऐसे। फिजिक्स विल एंड इन 6 मंथ्स ऐसे बोलता। अभी कितना साल हो गया 28 को लेकर, कितने साल हो गए अभी, 86 साल हो गए ना, नो 86 साल हो गए ना, अभी तक उनका खत्म ही नहीं हुआ, अभी और आगे जाके वो ऐसा सिद्धांत बनाने वाले हैं। इसलिए प्रभुपाद जी बोला करते थे भविष्य कितना भी हावेवर प्रॉमिसिंग इट इज, नेवर ट्रस्ट फ्यूचर हावेवर प्रॉमिसिंग इट इज, क्या बोलते हैं, भविष्य कितना भी आशादायक हो, कभी भी उसके ऊपर हमें निर्भर नहीं रहना चाहिए, ऐसे बोलते। तो ये लोग ऐसे ही हमेशा बोलते रहेंगे। तो प्रकृति के ऊपर भगवान नियंत्रण करते हैं, ऐसे भगवान कह रहे हैं भगवद्गीता में। और जीव भी एक प्रकृति है, भौतिक प्रकृति क्या है, वो अपरा प्रकृति है, और जीव परा प्रकृति है। दोनों प्रकृति होने के कारण भगवान पुरुष है, उसको नियंत्रण करने वाले हैं। जैसे पति का कार्यकलापों को पुरुष, जो पति है, या पत्नी का कार्यकलापों को पति नियंत्रण करते हैं, वैसे ही ये उदाहरण अभी बोलेंगे तो लोगों को अच्छा नहीं लगेगा ना। कम से कम यहाँ तो बोलेंगे हम। पत्नी के जो कार्यकलापों को पति नियंत्रण करते हैं, है ना, तो वैसे ही जो भौतिक प्रकृति और जो जीव प्रकृति है, परा या अपरा, दोनों प्रकृति को, ये कार्यकलापों को भगवान जो पुरुष है वो वास्तव में नियंत्रण करने वाले हैं, वो नियंत्रण करते हैं। तो ये संबंध है। और भौतिक प्रकृति अपरा है और जीव प्रकृति क्या है, परा है। ये ऊंचा और नीचा कैसे, किस आधार पर ऐसे बताया गया है, किसी को पता है क्यों एक को परा प्रकृति कहा गया और दूसरे को अपरा प्रकृति कहा गया, बताइए, कोई बताएंगे क्यों, क्यों ये भौतिक जगत या भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति है और जीव परा प्रकृति क्यों है ऐसा, उनको पूछिए, उनको क्यों है, समझ में आ गया प्रश्न, प्रश्न नहीं सुन रहे थे ना। भौतिक प्रकृति अपरा प्रकृति बोला गया है, भगवान भगवद्गीता में बोलते हैं ना, भूमि रपो नल वायु खम मनो बुद्धि रे वचा अहंकार इति अम्मे भिन्न प्रकृति रष्टदा अपरेयम इतस्तु अन्यम विद्धि मे प्रकृति पराम जीव भूतम महाभावो ये इदम जानते जगत। ये भौतिक प्रकृति जो 8 तत्वों से बना है वो अपरा प्रकृति है, और जीव क्या है, परा प्रकृति, ऐसे भगवान बोलते हैं। तो क्यों ये अंतर किया गया है दोनों के बीच में, या किस आधार पर इसको अंतर किया गया है, ये प्रश्न है, क्या उत्तर है इसके लिए,
तो परा प्रकृति
लेकिन प्रकृति से नियंत्रित भी होता है वो, है ना। आप मरना नहीं चाहते हैं लेकिन फिर भी आपको बाध्य किया जाता है। दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्य, ऐसा बोलते हैं, है ना। सभी लोग गुणों के प्रभाव में है ना। जीव किसके आधार पर अपरा परा है किया गया, समझ में आ गया मेरा प्रश्न। चेतना, चेतना के आधार पर। ये भौतिक प्रकृति जड़ प्रकृति है, उसमें चेतना नहीं है। और जीव प्रकृति क्या है, वो चेतना है, उसमें चेतन युक्त है। अचैतन्यम इदम सर्वम, ये भौतिक जगत अचैतन्य है,
जड़ है,
इसलिए उसको जड़ प्रकृति बोलते हैं। तो चेतना ही जड़ प्रकृति और जीव प्रकृति के बीच में अंतर है। तो ये संबंध है जीव प्रकृति जड़ प्रकृति। और जब जीवात्मा को इस जड़ प्रकृति में डाला जाता है तब ये जड़ प्रकृति कार्य क्रियाशील हो जाता है। भगवान अपने दृष्टिपात करते हैं, दृष्टिपात करके ये सभी जीव जीव प्रकृति को ये जड़ प्रकृति के गर्भ में डाल देते हैं। उसको भी भगवान बोलते हैं ना, तासाम ब्रह्म महद्योनिर अहम बीज प्रदर्पिता, भगवान बोलते हैं। सो मैं ये सौ महत्त्व या जड़ प्रकृति के गर्भ में ये जीवों को डाल देता हूँ, इसलिए मैं सभी जीवों का पिता हूँ, अहम बीज प्रदर्पिता, ऐसे बोलते हैं। बीज प्रदान करने वाला पिता हूँ, ऐसे बोलते। तो और भौतिक जगत में जीव गुणों के प्रभाव में आते हैं। तीन गुण, ये भौतिक जगत तीन गुणों से विभाजित है। ये प्रकृति के भौतिक प्रकृति के ये शक्तियां हैं तीन गुण। तो ये जीव बद्ध जीव को बांध देती है। गुण का एक और शब्द है रस्सी, उस गुणों के रस्सी से बांध देते हैं। ये ऐसा रस्सी है, हमें पता चले नहीं चलेगा कि हम बांधे हैं, लेकिन हम बंधे रहते हैं। ये गुणों से बंधे रहते हैं हम लोग। अलग अलग गुण होते हैं ना, अलग अलग प्रभाव। कोई बहुत ही आलसी रहता है, कोई बहुत ही ज्यादा क्रियाशील रहता है और कोई शांत रहता है और सुखी रहता है, आनंदमय रहता है, तपस्वी रहता है। ये सब सत्व रज तमोगुण का लक्षण है। इससे सभी जीव बंध गए हैं, उसके अनुसार ही सब क्रियाशील क्रिया करते रहते हैं इस जगत में। तो और ये तीनों गुण काल के प्रभाव में कार्य करते रहते हैं। काल, आधुनिक जमाने में काल का भी अच्छी तरह से उनको ज्ञान नहीं है। वो लोग सोचते हैं काल का वो विस्फोट के बाद काल आरंभ हुआ होते, कौन आरंभ किया उसको, क्यों आरंभ किया, क्यों सभी लोग इसके प्रभाव में हैं, ये सब उसके उनके पास कोई प्रश्न का हल नहीं है, है ना। तो काल भी भगवान का शक्ति है एक, और वो भी शाश्वत शक्ति है। उनके उनके प्रभाव, काल के प्रभाव में तीनों गुण कार्य करते हैं और तीन गुणों के प्रभाव में अब जीवात्मा कार्य करते हैं। इसलिए कर्म, उसको कर्म कहते हैं। कर्म का परिभाषा भगवान प्रभुपाद बोलते हैं। तो जो शाश्वत काल के प्रभाव में तीनों गुणों के संयोजन से, इंट्रैक्शन से, क्या बोलते हैं उसको, इंट्रैक्शन, सो नॉट मिश्रण, मिश्रण मतलब कॉम्बिनेशन। तो संयोजन से, तीन गुणों के संयोजन से जो कर्म होते हैं उसको कर्म कहते हैं। और कर्म क्या है, वो शाश्वत नहीं है। उसके फल को भुगतने के बाद, अच्छे या बुरा फल को भुगतने के बाद उसका खत्म हो जाता है। तो ऐसे इन पांचों का संबंध को वर्णन किया गया भगवद गीता में। ये सभी पांच तत्वों को मिलाकर परम सत्य कहा जाता है उसको। कंप्लीट होल या पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान या श्री कृष्ण कहा गया। ये सभी पांच तत्व उनसे आते हैं, इसलिए उनको पूर्ण कहा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदश्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। उसको उनको ये परम सत्य भी कहा गया, सुप्रीम एब्सोल्यूट ट्रुथ, द कंप्लीट होल, द पर्सनैलिटी ऑफ गॉड श्री कृष्ण।
तो ये अर्थ है परम सत्य का, क्या अर्थ है? जो ये पांचों जिनसे निकलते हैं उनको परम सत्य कहा गया। तो या अभी कलयुग है इसलिए तमोगुण का प्रभाव सब जगह फैल गया है। जब सत्ययुग आ जाता है तो फिर से सत्वगुण का प्रभाव सब जगह फैल जाता है, ठीक है ना? तो ये पांच तत्व है, हम इसको पढ़ेंगे नहीं क्योंकि बहुत लंबा है। भगवद गीता में और भी कई विषय है, तो भगवद गीता में देवी देवताओं के बारे में भी वर्णन आता है। देवी देवताएं कौन है? ये लोकपाल। कैसे हम समझ सकते हैं कि वो लोग अस्तित्व देवी देवता है? कैसे हम समझ सकते हैं कि देवी देवताएं है करके? क्या तर्क है इसके बारे में? अब आधुनिक वैज्ञानिक लोग बोलेंगे दूसरे लोगों में कोई जीव ही नहीं है करके, आप क्या बोल रहे हैं? देवी देवता कुछ तर्क तर्क चाहिए, हम भगवद गीता मानते नहीं। उस तर्क के आधार पर बोले तर्क के आधार पर तर्क हम भगवद गीता मानते नहीं। वैज्ञानिक लोग तो भगवद गीता नहीं मानते। ओके, जीव होंगे लेकिन देवी देवता होंगे है क्या?
भगवान है तो देवी देवता,
भगवान है करके कैसे सिद्ध करेंगे फिर आप? भगवान होने से देवी देवता का होने का क्या अर्थ है, संबंध है? असिस्टेंट चाहिए। ये भौतिक प्रकृति आप देखेंगे ब्रह्मांड कैसे चल रहा है, बहुत ही अच्छी तरह से चल रहा है ना। समय समय पर सूरज निकलते हैं, समय समय पर चंद्रमा, समय समय पर जो सीजन क्या बोलते हैं सीजन को, मौसम बदलते हैं, सब कुछ अच्छी तरह से चल रहा है। सूर्य के जो जो मूवमेंट्स, उनके जो गति के आधार पर हम लोग समय को भी निर्धारित कर सकते हैं, है ना? वो जंतर मंतर है ना, वो सूर्य के गति के अनुसार ही वो समय को, वो एक जयपुर के राजा थे, पांच जगह पर उन्होंने जंतर मंतर स्थापना किया। उन्होंने उज्जैन दैट इज जयपुर किंग एस्टैब्लिश्ड ऑल दिस फाइव प्लेसेस। तो वो क्या करता है, वो जो सूरज के गति के अनुसार समय को निर्धारित किया जाता है वहाँ पर। तो ये इतना सिस्टमेटिकली, इतना प्रिसाइजली भौतिक प्रकृति कार्य कर रहा है, इसका अर्थ है कि इसके ऊपर कोई नियंत्रण कर रहे है। तो जैसे हमारे सरकार चलता है, सरकार में एक क्या बोलते हैं प्रधानमंत्री होते हैं और उनके पास कई सारे अन्य मंत्री भी होते हैं, जब वो संचालन करते हैं तब सब कुछ देश अच्छी तरह से चलता है। हालांकि ये जो सरकार अच्छी तरह से नहीं चला सकती है, लेकिन भगवान का जो सरकार है वो अच्छी तरह से चला रहा है ना। ऐसा नहीं कि एक ग्रह दूसरे ग्रह के जाके ऐसे टकरा रहा है, वो टकराते हैं तो क्या होता था, हम लोग यहाँ पर चर्चा नहीं करते होते ये सब चीज़, हाँ है ना?
वो पोस्ट पे नहीं
पहुँचता। तो ऐसे हम लोग भगवान एक भौतिक प्रकृति एक सरकार के जैसे समान चल रहा है, तो अलग अलग लोक है उसमें लोकपाल है उसको। तो देवी देवता कौन है? वो लोकपाल है। अंग्रेजी में प्रॉपर बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑफ डिफरेंट प्लानिटरी सिस्टम्स, संस्कृत भाषा में उनको लोकपाल बोलते हैं। देवी देवता कौन है? ये लोकपाल है। अलग अलग और अलग अलग चीजों को नियंत्रण करते हैं भौतिक जगत में, वायु अग्नि
जल वगैरह नियंत्रण करते
डिपार्टमेंट,
तो वो तर्क है। तो भगवद गीता में उनके बारे में भी वर्णन आता है, लेकिन भगवान क्या बोलते हैं, उनको वो आराधना करना वो मना करते हैं, भगवान जरूरत नहीं बोलते काम हस्ते सर। और कैसे अलग अलग लोगों को जाने के लिए आजकल आप देखिए एस्ट्रल ट्रैवलिंग, स्पेस साइंस, स्पेस ट्रैवलिंग, तो आकाश में कैसे घूमना चाहिए बहुत ही प्रसिद्ध है आजकल। हाँ, वो अलग अलग रॉकेट बना रहे हैं। भगवद गीता में वो भी बताया गया है, कौन सा श्लोक आप उल्लेख कर रहे थे ना, यान्ति देव व्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतान यान्ति भूते च यान्ति मध्याजिनो मां। और भगवद गीता में यही नहीं, दूसरे ग्रह जाना भगवद गीता में, आध्यात्मिक जगत भगवान के धाम कैसे जाना वो भी वर्णन आता है। आधुनिक वैज्ञानिकों को उसके बारे में पता ही नहीं, और वो कैसे है भगवद गीता जो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के बीच में क्या अंतर है वो भी वर्णन आता है, कि भौतिक जगत एक शैडो प्रतिबिंब है ऐसे, उसके बारे में वर्णन करते हैं। और कैसे भगवान को प्राप्त करना है वो भी वर्णन आता है। आजकल लोग पुनर्जन्म के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में भी भगवद्गीता में तथा देहांतर प्राप्तिर धीरस्थ तृणम मुह्यते, उसके बारे में भगवद्गीता में आता है। ऐसे कई विषय जो कुछ भी जानना चाहते हैं, अंत में भगवान कहते हैं ज्ञानम तेहम स विज्ञानम इदम वक्षाम शेषतः यज्ञात्वा नेह भूयोन्याद ज्ञातव्यम अवशिष्यते। तो मैं ज्ञान और विज्ञान दोनों आपको बता दूंगा, इसको जानने के बाद और जानने का कोई चीज ही नहीं रहता है। आपको कोई विश्वविद्यालय जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भगवद गीता पढ़ लिया तो काफी है, भगवद गीता अध्ययन कर लिया तो काफी है। प्रभुपाद जी उसके तात्पर्य में लिखते हैं ना अंग्रेजी में, When cause of all causes becomes known, everything to be known becomes known, nothing remains unknown होते हैं। जो सबका स्रोत है उसका जानकारी जब पता चल गया तो जो भी जानना चाहिए उसका पूरा जानकारी होता है, और जानने का कुछ नहीं रह जाता है। ऐसे प्रभुपाद जी होते कस्मिन विज्ञात हो सर्वमी एतद् विज्ञातम भवतो, उपनिषदों में बताया गया। इस एक व्यक्ति के बारे में जान लिया तो आप सब कुछ जान लेंगे, और जाने का कोई जरूरत नहीं। कौन है वो? भगवान कृष्ण है ना। और प्रभुपाद भूमिका में भी वर्णन करते हैं कि ये परिपूर्ण, ये पांच विषय क्या है, ये पूर्ण कंप्लीट होल है, सब मिलाकर परिपूर्ण है। तो सिर्फ भगवद गीता को हम लोगों को अनुशीलन अनुसरण करने से जीवन में हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाता है। तो आधुनिक समाज क्या है, एक नास्तिक धारणा के ऊपर आधारित है कि ये भौतिक प्रकृति परिपूर्ण नहीं है। एक दृष्टि से देखेंगे तो हमें इसको परिपूर्ण बनाना है तकनीकी विकास के द्वारा। इसलिए वो क्या कर रहे हैं, तकनीकी का विकास कर रहा है, लेकिन नतीजा क्या हो रहा है, सब लोग कष्ट में है। जितना ये आप देखिए 40 साल पहले वो लोग बोला करते थे, हम लोग ऐसे 25 साल में ही कि ऐसा बनाएंगे कि मनुष्य को काम करने का जरूरत ही नहीं है, ले ऐसे बोलते थे। अभी 40 साल के बाद उनका 25 साल तो चले गए, 40 साल के बाद मनुष्य कम काम कर रहा है या काम नहीं कर रहा है, क्या कर रहे हैं वो लोग, मनुष्य लोग गधा बन गया, दिन है वो रात हो या कुछ पता नहीं है, मेहनत करना करना कर्म काम 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 काम। देखिए आप बाहर कितने भाग दौड़ कर रहे हैं, इधर उधर इधर उधर 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 भागते रहते भागते रहते भागते रहते। तो ये क्या मनुष्य समाज है? प्रभुपाद बोलते हैं कुत्ता चार पांव में भाग रहा है, तुम लोग चार पहियों में भाग रहे हो, क्या अंतर है ऐसे बोलते, ये क्या प्रगति है ये? तो तकनीकी की प्रगति से मनुष्य का जो संघर्ष है बढ़ जाता है, कुछ कम से कम जरूरतों के लिए संघर्ष करना पड़ता है। आपके पास बहुत सारे ऐसे पेपर होगा लेकिन आपके लिए खाने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, है ना। आजकल तथाकथित कुछ ना कुछ पैकिंग करके जो भी आता है वो दूध नामक एक वाइट सब्सटेंस आता है पैकेट में, वो लोग पीता है। लेकिन लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, बहुत सारा पेपर है, लेकिन कुछ अच्छा खाने के लिए नहीं है। ये आधुनिक समाज है, वो लोग ये सब बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। ये धन क्या है, ये एक बहुत बड़ा कॉन्स्पिरेसी है। बैंक वाले उसको प्रिंट करके 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 लोगों को दिखा रहे, मैं ये दे दूंगा, ये तुम ये काम करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, मेहनत करो, बोल रहे। दिस इज मॉडर्न इकोनॉमी। लोग कम से कम जरूरतों के लिए ऐसे मेहनत करते हैं। वही चीज वो क्या है, वो खेत में अच्छी तरह से शांतिपूर्वक रह के उगा सकते हैं जो भी जरूरत है उनके लिए, उनका कपड़ा, उनका मकान बना सकते हैं, जरूरत नहीं ये सीमेंट वगैरह, जरूरत ये सभी बड़े बड़े कारखाने, ये सभी बड़े बड़े मशीन, इसका जरूरत नहीं है। लोग सरलता से रह सकते हैं, ये पेपर की जरूरत नहीं है। ये पेपर दिखा के लोगों को गुमराह किया जा रहा है, बड़े बड़े सरकार भी इससे भ्रमित है, गुमराह है। सरकार भी लोन लेते हैं ना बैंकों से, है ना, पता है ना आपको, सरकार भी, अमेरिका के सरकार भी बैंक से लोन लेता है। सब लोग लोन 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 ले रहे हैं और जीवन भर संघर्ष करते हैं, लेकिन गीता भागवत सुनने के लिए, श्रवण करने के लिए भी समय नहीं लोगों के पास। तो सिर्फ हम लोग भगवद गीता को अच्छी तरह से, इसलिए प्रभुपाद बोलते थे कैसे हमारा इकोनॉमी कैसे होना चाहिए, अर्थव्यवस्था कैसे होना चाहिए। तो समाज को चार विभाजन करना चाहिए, चार या आठ विभाजन करना चाहिए, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ और वानप्रस्थ। उनमें से गृहस्थ और वानप्रस्थ, सो गृहस्थ और वैश्य, वो भी जो गृहस्थ वैश्य है उनको ही ये अर्थव्यवस्था का के बारे में चिंता होना चाहिए। अन्य सातों जो वर्ग है इनमें से कोई भी उनको ये अर्थव्यवस्था के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। उनको ये सभी पैसे कमाना या धान्य उगाना ये जरूरत नहीं है। तो ऐसे समाज, सरल समाज को हमें बनाना चाहिए, वो भगवद गीता सिखाता है। लोग सब लोगों के पास समय रहेगा ये सब सिखाने सीखने के लिए और सिखा आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर, नहीं तो वो लोग ऐसे भागते रहेंगे, भागते रहे। उनको रोक भी नहीं सकते, आप कुछ बोलना चाहेंगे तो वो सुनने के लिए उनको समय नहीं है। है ना, प्रभुपाद भगवद गीता में आगे वर्णन करेंगे। हाँ, वो क्या है, पार्ट टाइम मेडिटेटर समथिंग ऐसे ही हैज रिटन समथिंग इन 18 चैप्टर, पार्ट टाइम मेडिटेटर समथिंग ही राइट्स। ऐसे लोग, ऐसे लोग मिलेंगे आपको भक्तों में भी, पार्ट टाइम मेडिटेटर्स। ठीक है, तो सिर्फ भगवद गीता सब कुछ है इसमें। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी?
भगवद गीता का उद्देश्य हम लोग शाम को लेंगे उसको।
ये हम लोग जब भूमि का एक बार पूरा पढ़ेंगे तब इसके बारे में और पांच विषयों के बारे में और चर्चा करेंगे, क्योंकि लंबा है। कोई प्रश्न, टीका टिप्पणी?
गीता वैदिक ज्ञान का संपूर्ण प्रस्तुतिकरण है, तो लेकिन दैनिक जीवन में और भी अन्य चीजें की आवश्यकता पड़ती है, जैसे खेती कैसे करना है, अगर कोई वर्णाश्रम का भी भाग है तो खेती कैसे करना है, और अन्य जैसे कानून व्यवस्था कैसे हो, न्याय कैसे किया जाए,
क्यों नहीं है, क्यों नहीं है, क्यों नहीं है भगवद गीता में न्याय? आतताई ना, वो श्लोक है ना, आतताइयों को मार देना चाहिए करके, है ना, डिटेल भी है, तब पर पढ़ेंगे तो डिटेल में मिलेगा।
इतना भगवद गीता में है पढ़ लिया तो काफी है, और चाहे ठीक है और भी चाहे तो भगवत भागवतम है। सो भगवद गीता एक धर्म शास्त्र भी है, क्योंकि भगवान धर्म स्थापना करने के लिए आते हैं, उसमें दिया गया न्याय वगैरह सब कुछ दिया गया। खेती करना कैसे करना भगवदगीता में नहीं है, तो वो सब जरूरत नहीं है, क्योंकि ये जो विश्वविद्यालय है खेती का सब बिगाड़ दिया गया है ना, कृषि विश्वविद्यालय है ना आजकल। पहले जमाने में अपने पिता से वो लोग सीख लेते थे, और ये लोग कृषि विश्वविद्यालय बना के सब कुछ बिगाड़ दिया है, सब कुछ बिगाड़ दिया, सभी गायों को बिगाड़ दिया और सभी जो बीज है उसको बिगाड़ दिया। आजकल वो है ना बीटी, क्या बोलते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड जीएम सीड्स आता है ना, जेनेटिकली मॉडिफाइड सीड्स, और सभी लोग विष खा रहे हैं, वो लोग कुछ धान्य नहीं कर रहे, उसको विश्वविद्यालय की जरूरत नहीं है। वो जो पिताजी करते थे वो पुत्र वैश्य कर्म समुद्भव कृषि गोरक्षा वाज्ञा, कैसे भगवान कृष्ण कैसे गोरक्षा करना चाहिए वो कोई शास्त्र पढ़ के नहीं सीखा उन्होंने, उन्होंने अपने पिताजी को देखा और 5 साल से ही शुरू किया, पहले बछड़ों को लिया उन्होंने, बाद में गायों को भी, है कि नहीं।
नहीं,
भगवद गीता में जो उल्लेख है मनु संहिता से भी उल्लेख है, सब कुछ है उसमें, तो वो भी हम लोग सीख सकते हैं। गीता भागवत से भी खेती कैसे सीखना चाहिए वो भी सीख सकते हैं, वो भी प्रकाशित होगा आपको भगवद गीता से, ठीक है। जो फार्मर्स खेती करने वाले हैं, क्योंकि वो भगवद गीता नहीं पढ़ रहे इसलिए उनको ठीक तरह से खेती करना नहीं आ रहा है ना। और वो खेती करना आजकल बहुत सारा हम लोग सेल्फ सफिशिएंसी अन्न स्केर्सिटी ऑफ फूड के बारे में चर्चा करते हैं हम लोग, लेकिन मनुष्य समाज में कभी ऐसे सोचना नहीं चाहिए क्या खाऊंगा मैं करके, सिर्फ हमें नियत कर्म करना चाहिए, नियत कर्म करने से अन्न प्राप्त होगा। अन्ना भवति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभो यज्ञात् भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भवः, तो हमें सबको नियत कर्म करने में लगाना चाहिए, तब अन्न अपने आप आ जाता है। या वो एक वर्ग के लिए है, ठीक है आप संशोधन करके डिटेल्स दैट इज डिटेल, बट यू नो भगवद गीता में वो है उसके बारे में, है ना। सभी लोग अन्न तो नियत कर्म करना चाहिए, और वैश्य का कर्म है कृषि गोरक्षा, कृषि के बारे में भी बताया गया, ऐसा नहीं कि नहीं बताया गया है ना। उस तात्पर्य में अनाज भवंती तात्पर्य में वो पता है ना, इकोनॉमी कैसे होना चाहिए, इकोनॉमी शुड नॉट बी बेस्ड ऑन इंडस्ट्रीज, इकोनॉमी शुड बी बेस्ड ऑन एग्रीकल्चर। और
भोगने के बाद